लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहित आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे लघु और मध्यम व्यवसायों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि आर्थिक और सामाजिक संकट के बावजूद वे अपना व्यवसाय जारी रखने और अपने समुदायों की सेवा करने के तरीकों की तलाश करने में सक्षम बन सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवारी कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत राघव जी के सातवीं भेंट वार्ता को प्रस्तुत कर रहे हैं। पंद्रह अगस्त भारत के लिए सबसे महान दिन है, जब हम हमारे देश की आजादी का उत्सव मनाते हैं। देश को आजादी मिले 75 वर्ष बीत चुके हैं। इस खास अवसर को भारत सरकार आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। इस दिन को हम उन वीर योद्धाओं की याद करते हैं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। हम भारत के इन वीर योद्धाओं को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। कैथोलिक कलीसिया के लिए यह दिन और एक विशेष घटना की याद दिलाता है, माता मरियम के स्वर्गोद्ग्रहण महापर्व का दिन। ऐसे सुंदर अवसर पर हमारे साथ वैटिकन रेडियो के स्टूडियो में मौजूद हैं भारत से पावर सिस्टम इंजीनियर राघव जी। तो लीजिए, प्रस्तुत है राघव जी के साथ एक भेंट वार्ता। उनके साथ बात कर रही हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। राघव जी, वैटिकन रेडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हमें बड़ी खुशी है कि आप हमारे बीच आए हैं। इस भेंट वार्ता में आगे बढ़ने के पूर्व हम आपका परिचय जानना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आप यहाँ क्यों आए हैं।
थैंक यू उषा जी, आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम राघव है, मैं पावर सिस्टम इंजीनियर हूँ और दिल्ली के पास नोएडा शहर में रहता हूँ और वहीं जॉब करता हूँ। इसके अतिरिक्त आज चूंकि हम वैटिकन रेडियो के स्टूडियोज में बैठे हैं और यहाँ से अपने दर्शकों श्रोताओं से बात कर रहे हैं, तो रेडियो के साथ हमारा भी एक कनेक्शन है। रेडियो मधुबन 90.4 FM एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है जो सामुदायिक रेडियोज की कैटेगरी में आता है और भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा लाइसेंस प्राप्त रेडियो है। इस रेडियो की शुरुआत 2011 में हुई थी और तभी से मैं रेडियो के साथ जुड़ा हूँ, तो उस नाते से आज वैटिकन रेडियो में आना हुआ है। वर्तमान समय में रेडियो मधुबन में मीडिया हेड हूँ और सोशल मीडिया स्ट्रेटजी और ब्रांडिंग, ये तीन विषय मेरे पास होते हैं जिनके बारे में मुझे खास ध्यान देना होता है। अतिरिक्त इसके रेडियो पे शोज करना, ये हमारी पूरी टीम का ही कर्तव्य है, तो हम सभी मिलके शोज करते हैं।
बहुत अच्छी बात, सचमुच बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आज आप हमारे बीच में हैं, तो आप कैसे यहाँ पहुँचे और क्या मकसद था आपको?
हम लोग नई दिल्ली से निकले थे यूरोप की एक यात्रा पे और यूरोप में अलग अलग शहरों में जाने का हमारा प्लान है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त आने वाला है और ये भारत का 75वां आज़ादी समारोह रहेगा, तो इटली और जर्मनी दो कंट्रीज में हमें कॉन्सुलेट्स और एम्बेसीज के साथ प्रोग्राम करने का न्योता है। और 15 अगस्त के दिन हम लोग, हमारी टीम में 4 या 5 लोग आए हैं साथ में। हम चारों पांचों लोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग कॉन्सुलेट्स एंड एम्बेसीज में भारत के स्वतंत्रता दिवस का जो समारोह है उसकी शोभा बढ़ाने के लिए आए हैं। और हमारी ऐसी इच्छा रहेगी कि आप सभी लोग जो घरों में बैठे हुए अपना ये शो सुन रहे हैं, जहां जहां भी आप हैं, जिस भी शहर या गांव या घर में आप जहां भी हैं, जरूर इस आजादी के अमृत महोत्सव को धूमधाम से अच्छे से मनाइएगा और सच्ची आजादी को याद कीजिएगा। आजादी केवल किसी के राज्य या किसी के शासन से या किसी के शासन को हटने से नहीं मिलती, आजादी मन से मिलती है। और सच्ची मन की आजादी तब मिलती है जब मन स्वतंत्र होता है और मन स्वतंत्र ईश्वर की याद से होता है। तो आप सभी जरूर इस बारे में विचार कीजिएगा और सच्चा अमृत महोत्सव मनाइएगा।
बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात आपने कही। और भारत से बाहर निकल करके अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए आप इस तरह का ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं, तो आपको शुभकामनाएं। और जब आप इस पुण्य भूमि में आए हैं वैटिकन में, आपको कैसा लग रहा है?
वैटिकन में आना अपने आप में ही एक बहुत ही अद्भुत महसूसता है। लगभग 2 दिन हो गए हैं हमें रोम में, और दोनों दिन ही हमें वैटिकन आने का मौका मिला। और वैटिकन इतना खास, इतना चौंका देने वाला ऐसा एक अनुभव है, क्योंकि एक टूरिस्ट की नज़र से देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खूबसूरत हैं या आकर्षक हैं, परंतु अगर एक सीकर की नज़र से देखें, एक ऐसे व्यक्ति की नज़र से जो कुछ ना कुछ ढूंढना चाहता है जिंदगी में, या कुछ किसी चीज़ की खोज में है, सत्य की खोज में, खुशी की खोज में, शांति की खोज में, तो उसकी ये खोज वैटिकन आकर के बहुत हद तक पूरी हो जाती है। क्योंकि वैटिकन में एक ऐसी फीलिंग है, एक इतनी अच्छी प्योर और पावरफुल फीलिंग है वैटिकन में, खास करके सेंट पीटर स्क्वायर में और इस पूरे बुलेवर्ड में, कि आप जितनी भी बार यहां आए या जितना भी समय यहां बिताएं, ऐसा लगता है कि बहुत कम है और बार बार आने का मन करता है। दुनिया भर में जितने भी लोग अपने को भारत का वासी महसूस करते हैं, क्योंकि अनेकानेक टूरिस्ट, अनेकानेक पर्यटक आते हैं और भारत को देख करके जाते हैं, और ये सदाकाल की रीत रही है भारत में, चाइनीज, पोर्चुगीज, ब्रिटिशर्स, फ्रांसीसी, कई सारे लोग गए, देखा, घूमा, भारत को पसंद किया और भारत के कल्चर में कुछ ना कुछ ऐड किया और उस कल्चर से कुछ ना कुछ सीखा। तो मैं समझता हूं कि केवल नागरिकता के माध्यम से नहीं, परंतु दिल से जो भी अपने आप को भारत का प्रेमी महसूस करता है, उन सभी को मैं पहले तो बधाई देना चाहूंगा कि भारतवर्ष ने 75 वर्ष पूरे किए हैं स्वतंत्रता के। और मैं फिर वही संदेश आप सभी को दोबारा देना चाहूंगा कि आप सभी एक दूसरे के साथ प्रीत बना के चलो, क्योंकि भारत की रीत यही है कि एक दूसरे के साथ प्रीत बनी रहे। प्रीत बनी रहेगी तो हम सब आगे प्रोग्रेस करेंगे।
तो राघव, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सचमुच बड़ी खुशी हुई आपसे मिल करके, तो बहुत धन्यवाद। और
उषा जी, आपका भी ढेर 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 स्वागत और धन्यवाद।
श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत राघव जी के साथ हुई भेंट वार्ता को सुन रहे थे।
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका प्यार और परिवार। लेखिका है भवानी कौल। श्रोताओं, पारिवारिक जीवन का अस्तित्व प्रेम, त्याग, समर्पण, संतुष्टि और संस्कार पर निर्भर करता है। पति पत्नी का रिश्ता बेहद खूबसूरत और नाजुक होता है। यदि इस रिश्ते में प्यार और विश्वास की कमी हो जाती है तो रिश्ता तकलीफ देने लगता है। आज के भौतिकवादी युग में इस रिश्ते में व्यापक परिवर्तन आ रहा है। अब इसे हम पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव कहें, टीवी कल्चर कहें, या अपनी कमजोरी जो पारिवारिक रिश्ते में जहर घोल रहा है, माता पिता के बीच हुए अलगाव का असर सबसे ज्यादा उनके बच्चों पर ही होता है। बच्चों में माता पिता के प्रति खीज, गुस्सा और शक आने लगता है। उनमें असुरक्षा और आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। वे अपने वैवाहिक जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं या डर का भाव पैदा हो जाता है। अतः बच्चों के खातिर अगर परिवार को टूटने से बचाने का कोई चांस हो तो जरूर उसे अजमा लेना चाहिए। बेशक पति के विवाहेतर संबंध किसी भी पत्नी को स्वीकार नहीं हो सकते, लेकिन यदि पति को अपनी गलती का एहसास हो गया हो और वह पत्नी को भरोसा दे रहा है कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा, तो पत्नी को ठंडे दिमाग से विचार कर उन्हें माफ कर देना चाहिए। उसका यह फैसला परिवार को बिखरने से बचा सकता है। याद रखें, जोड़ना हमेशा सुखदायक है और तोड़ना पीड़ादायक। गलती से सीखना ही जीवन का आधार है। आशा है आज की नाटिका टूटते परिवारों का मार्गदर्शन कर सके। तो लीजिए, प्रस्तुत है भवानी कोल की लिखी नाटिका प्यार और परिवार।
हरी, सुन सुन सुन, ठीक है ठीक है, तुम कॉफी और मैं चाय, ठीक है?
अच्छा मॉम, कॉफी मैं बनाती हूँ। मेरे हाथ की बनी कॉफी पीकर तो देखो आप।
क्या, तुम कॉफी बनाओगी?
अरे सीख गई हूँ मॉम। देखो, वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है ना।
हाँ, यहाँ थी तब तो बड़े नखरे दिखाती थी तू।
हाँ, छोड़ो भी मॉम, अरे बचपना था उस समय।
और अभी?
अरे अभी मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरे पास।
हाँ हाँ बाबा, जानती हूँ, तेरे पास एक बड़ा बंगला है, एक बहुत बड़ी गाड़ी है, बैंक बैलेंस है और न्यूयॉर्क जैसे शहर में एक बड़ी कंपनी की CEO। और कुछ बोलो। बस तुम्हारे पास नहीं है तो कोई प्यार करने वाला नहीं है।
आहा, तुम भी ना मॉम, मुझे शादी नहीं करना, मुझे नहीं चाहिए किसी का स्टूपिड प्यार व्यार।
अरे मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो।
जानती हो तो फिर पूछो मत ना, तकलीफ होती है मॉम।
अच्छा चल, मैं तुझे एक अच्छी कहानी सुनाती हूँ, और वो भी सच्ची कहानी, एकदम सच्ची, मेरी अपनी कहानी, किसी से नहीं कह पाई।
अच्छा, तो फिर सुनाओ।
देख, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, बहुत चुलबुली, बिल्कुल खिलंदड़, दुनिया से बेखबर, हंसी ठट्ठा, ही बकबक, एकदम मस्त, दोस्तों के साथ आए दिन मस्ती करती थी, तभी मेरे जीवन में आया अमर।
हाँ हाँ, आपके जीवन में कोई आया? ओ।
हाय स्वरा, कैसी हो?
वेल, अच्छी हूँ। आज इतना चहक क्यों रहे हो?
इतनी मिन्नतों के बाद तुम जो मिली हो, तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। न जाने कितने मंदिरों में पूजा अर्चना की, मस्जिदों में जाकर तेरे नाम के धागे बांधे, गुरुद्वारे में मत्था टेका, गिरजाघर में हर रविवार मोमबत्ती जलाकर मदर मैरी से तुझे मांगता था। हो हो, पसीना आ गया तुझे पाने में।
अरे इतनी भागदौड़ करने की क्या जरूरत थी, मैं तो यूं ही मिल जाती।
कैसे?
अरे पहले ही दिन आई लव यू बोल देता।
पागल कुत्ते ने काटा है, जो तुम्हें कह देता आई लव यू, पलट कर सैंडल मारती ना तो नानी दादी याद आ जाती। वैसे भी कॉलेज की खुर्राट छात्र अध्यक्ष को कौन क्या बोलने की जरूरत करेगा, किसमें जरूरत है बताओ।
ओ, तो तुम्हारा मतलब है कि मैं इतनी डरावनी थी?
नहीं देखो, पर कहने के पहले आदमी डरता तो है ना, चाहता तो था पर सामने आते ही।
हाँ हाँ, तुम्हारी आंखों में देखकर मैं भाप गई थी कि तुम्हारे अंदर कुछ चल रहा है।
बताओ भला, सब कुछ जानते हुए भी बन रही थी है ना, देखकर भी अनदेखा कर दिया।
मैं भी चाहती थी कि तुम मेरे पास आओ, मुझसे कुछ कहो, पर पता नहीं।
अरे बाप रे, हिम्मत ही नहीं होती थी, कहां तुम अध्यक्ष महोदया और कहां मैं अदना सा सीधा साधा छात्र।
आहा, प्यार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, फिर तुमने वो चिट्ठी और फूल भिजवाने की हिम्मत कैसे कर ली।
ओहो, मेरा दोस्त जोगिंदर, उसने मजाक में लिखकर तुम तक पहुंचा दिया और उसे तुमने कबूल कर लिया। बहुत पापड़ बेले हैं तुम्हें पाने के लिए भाई।
और फिर हम दोनों का प्यार परवान चढ़ता गया। और हाँ, तुमने एक ऐसे आदमी से शादी कर ली जो कमाता भी नहीं था। बंद करो अपनी लव स्टोरी मॉम। अच्छा, और फिर तुम्हारी जिंदगी में दूसरी औरत आ गई। मम्मी तुम अब तक कैसे सहन करती रही हो?
बेटा, परिस्थिति के आगे एक दिन सबको झुकना पड़ता है। तुम छोटी थी, तुम्हें लेकर अकेली कहाँ जाती, और जमाना इतना खराब भी है। फिर मैं जिंदगी से समझौता करती चली गई।
फिर ये सब सहन कर महान औरत बन गई, यही कहना चाहती हो ना मॉम? तुम्हें तो ना अवार्ड मिलना चाहिए, और वो औरत तुम्हारी जगह लेकर बैठी है, और तुम हाथ पर हाथ धरे घर बैठी हो।
बेटा, अपनी करनी अपने साथ, भुगतना सबको यही है। सच कह रही हूँ, जब इंसान गलत करता है ना, तो भीतर से खुद बहुत डरा होता है, और अंदर ही अंदर वह टूटता चला जाता है। मैं मानती हूँ तुम्हारा पापा के गलत और बुरे कामों का तुझ पर बुरा असर हुआ है, जिस कारण तुम विवाह जैसे पवित्र और सुंदर बंधन में बंधना नहीं चाहती हो। पर सभी ऐसे नहीं होते हैं बेटा, सोच लो, खोना आसान है लेकिन पाना मुश्किल। वापस जाने से पहले अच्छे से पढ़ लेना ये चिट्ठी।
स्वरा, तुम जीत गई और मैं हार गया। तुम्हारी दृढ़ता और धैर्य और सहनशीलता के आगे मैं नतमस्तक हूं। मुझे माफ कर दो स्वरा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। तुम्हारा हक मुझ पर है और रहेगा। मैंने चिट्ठी पढ़ ली थी जो तुमने अंजलि के लिए लिखी थी। मैं भटक गया था, पर अब मैं वापस आ गया हूं। माफ कर दो मुझे।
वाह पापा वाह, ये कोई नई चाल तो नहीं है ना? बेचारी औरत तुम्हारे पीछे पागल हो रही है और तुम उस शीतल के साथ रोमांस में लगे हो। अरे मन भर गया तो वापस चले आए, फिर इतने साल जो तुमने उससे छीने, क्या उसे लौटा सकोगे? अगर लौटा सकोगे ना पापा, तब मान जाऊंगी। उस औरत का दर्द तुम्हें दिखा नहीं, तुमने लव मैरिज किया था ना, फिर ऐसा क्यों किया? अरे हम पर क्या बीती, क्या इसे जानते हो तुम? तुम वापस चले जाओ, हमने जीना सीख लिया है। पापा अब वापस चले जाओ।
अंजलि, अंजलि बेटा, अंजलि, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, पर देखो, तुम दोनों हमेशा हमेशा मेरे दिल में थे, तभी तो मैं लौट आया।
झूठ, सब झूठ है, ये झूठ है।
नहीं बेटा, नहीं
बेटा, माफ कर दे बेटा।
तुम माफ कर पाओगी मम्मी?
शायद इनकी गलतियों को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, पर इन्हें भुला भी तो नहीं पाऊंगी, इसीलिए।
हाँ बेटा, हाँ बेटा, माफ कर दो।
बेटा, गाड़ी का दूसरा पहिया खराब हो जाता है ना, तो सबसे पहले उसे ठीक करवाते हैं, सुधारते हैं। जब खराब पहिया बिल्कुल नहीं सुधरता है, तब नया पहिया खरीदा जाता है।
माँ, तुम तो बहुत इमोशनल कर देती हो।
जो भी है बेटा, अंजलि अब आखिरी बार माफ कर दो, माफ कर दो बेटा।
ठीक है माँ, सिर्फ तुम्हारी खातिर।
प्यार और परिवार, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे संतोष जोशी, समता बोरेकर, अमित सिंह और भवानी कौल। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।